अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर और मेरे साथ हैं वलीद। आज हमारी फाइनली फर्स्ट एपिसोड है और हम लोग एक नई जर्नी पे जाने लगे हैं जहां पे हम लोग मुख्तलिफ लोगों को बुलाएंगे और उनसे सीखेंगे। और ये मोर ऑफ अ सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस है और इसमें जाहिर सी बात है वो बातें जो हम लोग नॉर्मली यूट्यूब से या किताबों से नहीं भी सीख पाते हैं वो हम लोगों से मिल के सीखते हैं और उसी का एक सिलसिला है जिसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं।
ये मुदस्सिर एक चीज बताना भूल गए यार, दुनिया सारा पॉडकास्ट कर रही है, क्या डिफरेंट कर रहे हो उसमें?
यार जो दुनिया करी ना एग्जैक्ट वही करना है, डिफरेंट ये कि अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
This is the thing.
तो आइडिया ये है कि आइडिया बेसिकली ये है कि हम लोगों ने लोगों से लोगों के बारे में भी पूछना है, बट ज्यादा जो है वो हम लोग उस प्रोफेशन को समझना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट इट लॉट ऑफ टाइम्स के मेरे और वलीद के हम लोग, क्योंकि जहरी बात है हम जॉब्स भी कर रहे हैं अपनी और हमारी इंडस्ट्री में जान पहचान भी है, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन है, सो वी हैव एन एक्सेस। और एक एक्सेस है कि हम लोगों के पास मुख्तलिफ लोगों के साथ एक्सेस है, हम उनसे मिलते हैं, बैठते हैं। और मुझे भी ये फील हुआ वलीद को भी कि हम लोगों ने जितना कुछ सीखा है लोगों से मिल के और इन इंटरेक्शन से, मे बी दैट इज वट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड एज वेल, कि हम उसको वीडियो में लेके आए और हम लोगों से मिले और वही डिस्कशंस जो हम अपने चाय के टेबलों पे और अपनी गपशप में कर रहे होते हैं वही जब हम रिकॉर्ड करें तो इट्स एन ओपन एजुकेशन आई थिंक फॉर एवरीवन, जो हमारी बातों को सुन के उससे वो भी लर्न कर सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट ये था कि हम देखें, हम आए दिन हर बंदों को सेलिब्रिटीज को देखते हैं, बट वो हिडन जेम्स जो लोग आपके सामने पब्लिकली नहीं आते, बोल नहीं सकते, वो बेसिकली क्या टैलेंट रखते हैं, जो हिडन टैलेंट है उनको सामने लेके आना और उनकी एक्सपर्टीज को जिनसे आपको बेनिफिट हो और आप अपनी डेली लाइफ में एक्सेल कर सकें और एक सक्सेसफुल आदमी बन सकें।
सो दिस इज अबाउट अस और आज हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं जी, पहले यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं डॉक्टर अदील एम सैयद। इन्होंने PhD की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन मोर ऑन दैट फ्रॉम हिम हिमसेल्फ। तो अदील भाई आप खुद शुरू करें और अपने बारे में हमें जरा बताएं।
जी जनाब, थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इनवाइट किया मुझे। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है, आई एम PhD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मेरी बाकी बैचलर्स और MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही है और आई एम अ फुल टाइम टीचर। सो दैट्स इट।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों?
वेल 2003 में व्हेन आई स्टार्टेड माय यूनिवर्सिटी लाइफ, तब मुझे जो मेन क्रेज था वो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की तरफ ही था। तो आई हैड बेसिकली 2-3 ऑप्शंस, या तो मैं BIT कर सकता था या मैं CS कर सकता था या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता था। सो आई अप्लाइड इन आई थिंक 5 or 6 यूनिवर्सिटीज और उसमें मेरा जो कोर था टारगेट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो आई ऑप्टेड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं CS को और IT में, उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया, बल्कि मेरा मेकाट्रॉनिक्स में भी फॉर सम रीजन हो गया, आई डिडंट अप्लाई फॉर इट। लेकिन
दिस इज वन व्हेन, जब आपने सेकंड ईयर कर ली थी?
जब मैंने सेकंड ईयर कर ली थी। यस।
अच्छा,
उस जमाने में आई थिंक जब आपने की होगी ये, जब अप्लाई किया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका उस टाइम इतना स्कोप नहीं होता होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि एक जमाना ऐसा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बड़ा नॉर्मल इंजीनियरिंग समझा जाता था, सिर्फ इलेक्ट्रिकल
केमिकल। बिफोर दैट, दिस इज बिफोर दैट,
बिफोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। अच्छा, 2003 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बूम अभी नहीं आया था,
ठीक है,
आई वुड से। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ भी ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये लिंक नहीं थी,
ठीक है।
लेकिन आई वॉज फोकस्ड, मैंने मैट्रिक के बाद ही जो है बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर काम शाम करना स्टार्ट कर दिया। C++, GW बेसिक तब बहुत कॉमन होती थी और मेरे बड़े भाई जो हैं माशाल्लाह वो वैसे तो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग का बड़ा क्रेज होता था, आई यूज्ड टू सी हिम कि यार ये जबरदस्त है, और वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर वगैरह खुद बनाया करते थे। लूडो बना रहे थे उन दिनों, बड़ी GUI बेस्ड बटन के साथ गोट्स चल रही हैं और वो सब कुछ, और वो तो मुझे बड़ा, आई वाज रियली इंस्पायर्ड।
आपके भाई बना रहे थे?
हाँ, मेरे भाई हु वाज एक्चुअली परसुइंग MBBS।
अच्छा,
लेकिन ये है कि मुझे एक क्रेज था, प्लस ये कि मेरे एक दो टीचर्स बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आई वुड लाइक टू नेम देम, सर सलमान थे और एक मैडम सालिया थी, फिर हमारे साथ वाले घर में रह रहा करते थे अली रजा एजाज, तो उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली। तो ये 2-3 लोग जो हैं,
अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही और आप क्या समझते हैं टुडे आप जिस जगह स्टैंड कर रहे हैं तो डू यू थिंक दिस वॉज द राइट ऑप्शन टू चूज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसमें PhD तक जाना? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग तक लेते हैं, BS करते हैं, PhD तक नहीं जाना। उस हवाले से जरा अगर आप थोड़ा
अच्छा देखें, इसमें ना दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि नो रिग्रेट्स ऑन चूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई लाइक डूइंग इट, आई डिड इट। सो जिस तरह कहते हैं ना कि इफ यू डू समथिंग दैट यू लाइक देन वर्क बिकम्स फन, यू डोंट गेट टायर्ड डूइंग दोस थिंग्स। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर चूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो जिस तरह कहा जाता है ना, इफ गिवन अ सेकंड चांस आई विल अगेन ऑप्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
बट ये वो फैसला है जो आपने सेकंड ईयर में लिया था।
हाँ, सेकंड ईयर में
नहीं, जिंदगी में ना सबसे ज्यादा जो चीज मुझे ना हमेशा से फैसिनेट की है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में और ये भी यूनिवर्सिटी में होते थे, और ये चीज ना मुझे बड़े ना मतलब समझ लो कि बैक इन द डेज उस वक्त से आज तक ये चीज बड़ी फैसिनेट करती है कि अदील भाई वाज ऑलवेज क्लियर। अदील भाई यूनिवर्सिटी में क्लियर थे कि मैंने टीचिंग करनी है। इन्होंने वो स्टेप्स उठाए जो इन्होंने टीचिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए उठाने,
सिर्फ
इन्होंने एग्जैक्टली
एजुकेशन में क्लियर थे या बाकी चीजों में भी क्लियर थे?
नहीं नहीं, मैं ज्यादा क्लियर एजुकेशन में ही था, बाकी चीजों में थिंग्स वर अ बिट फजी। लेकिन एजुकेशन के अंदर भी मेनली इसीलिए कि मेरे वालिद साहब क्योंकि टीचर हैं, एंड आई आइडियलाइज हिम अ लॉट। आई मतलब आई हैव अ सिंपल रूल के अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल और उसके बाद व्हाटएवर माय फादर सेज इज द राइट थिंग। So he was a teacher. I wanted to be more like him. So I chose teaching. Teaching के अंदर रहते हुए software engineering में कर रहा था, मेरा शौक भी था। तो I figured out, मुझे पता चला कि MS करना जरूरी है, और मेरी अम्मी को भी बड़ा शौक था कि मैं MS करूँ। तो जब मैंने bachelor's complete किया तो मेरा बड़ा अच्छा एक जबरदस्त job होगी PTC के अंदर, जो कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं आपने ये नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है।
क्यों क्यों नहीं किया आपने, क्या रीजन क्या थी?
उनके अपने रीजंस थे जो कि मुझे तब बहुत बुरे लगे थे। इट वाज अ वेरी 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 गुड स्टार्ट दैट दे वर ऑफरिंग, बट ही सेड कि नहीं ये सिगरेट वाली जॉब नहीं करनी। तो
क्या माइंडसेट में हराम हलाल या कोई इस टाइप का कांसेप्ट था या क्या?
मेन चीज तो यही थी, ही वाज ऑफ द व्यू कि आप जो है इसको ना करो, ये नशा वाली जो है ना ये ना करो। तो आई सेड कि हाँ ठीक है। मैं डीप डाउन इनसाइड मेरे लिए जो मेन मोटिवेशन थी वो ये थी कि दे वर ऑफरिंग अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन जे के मुझे परसू करना था टीचिंग को, और मेरी अम्मी की तरफ से भी प्रेशर था कि मास्टर्स करो। तो सब कुछ सोच साझ के मैंने कहा कि हाँ दिस इज फाइन। तो जिस तरह मुदस्सर कह रहे हैं कि मैं फोकस था, तो थोड़ा बहुत मैं मतलब आई वाज अ बिट डिजी एंड फजी एट दैट टाइम, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन ये कि इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने MS में दाखिला ले लिया, साथ ही मेरी जॉब स्टार्ट हो गई, और जॉब भी मेरी जिस बंदे के स्टार्ट साथ स्टार्ट हुई, आई रियली रियली एडमायर हिम, आइडियलाइज हिम, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई नो, सर जहाज़ेब अहमद। बल्कि जब मुदस्सर को तो पता ही है कि वो टीचर भी रह चुके हैं, तो मतलब इंटेल का 486 प्रोसेसर बनाने में उस बंदे का हाथ है, और
अच्छा
बाकायदा उनको उसकी शील्ड भी मिली हुई जो कि हमने देखी, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद MS कर लिया। MS करने के बाद पता चला कि दुनिया में तो शायद MS के बाद भी और चीजें जरूरी हैं।
फिर आप PhD की जर्नी की तरफ गए।
हाँ, फिर I took some time. I took 3 years.
लेकिन अगेन here I'll take a stop again. देखो हमारे साथ भी ये हुआ कि जब हमने भी बैचलर्स की तो हमें पता चला कि बैचलर्स काफी नहीं है। एक टाइम आता है कि आपको यू गो इनटू द इंडस्ट्री और आपको पता चलता है कि नहीं, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास तो फ्लान नहीं है। MS करो, कोई कहता है MS करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। ऑब्वियसली बात है आपको भी उस वक्त आया तो होगा कि यार नहीं, MS ना करो, ये कर लो, जॉब कर लो, इंटर्नशिप कर लो, ये कर लो, इस तरह जाओ, या MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना करो। क्या उस वक्त भी कैसा क्लाउड था? आपने MS कौन से साल में की थी? क्या उस वक्त
मैंने MS 2000
क्रैश आ चुका था उसका? Because I remember there was a boom and then there was a crash, और फिर उसके बाद सारे कहते थे सॉफ्टवेयर में नहीं जाना।
नहीं, as such सॉफ्टवेयर में इस तरह क्रैश नहीं आया, लेकिन ये कि back in those days जब मैंने MS करना स्टार्ट किया 2008 में, तो मैं ऑलरेडी एक साल का गैप ले चुका था। BS के बाद एक साल का गैप लेके मैंने MS स्टार्ट किया था। इम्पोर्टेंट बात
क्यों लिया, मतलब कंफ्यूज थे या
नहीं?
क्या
कंफ्यूज इस तरह नहीं था कि मैं असल में एक स्टूडेंट बॉडी थी बहुत हमारी बड़ी, बहरीन एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, बैकसेप नाम था उसका, मैं उसका चेयरमैन था। और हम लोग एक बहुत ही कोई बड़े लेवल का ना, जो कि अभी तक बहरिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंक्शन रहा है, हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था जो कि करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें दोनों चीजें थी। उसकी वजह से मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की सबमिशन डिले हो गई. फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट की सबमिशन डिले हुई तो मैं आई मिस द चांस. और लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड. मेरी दो तीन जगह पर जॉब इंटरव्यूज हुए, मैं सेलेक्ट भी हुआ. सबसे पहले मेरा जॉब हुई थी LMKR में, फिर एक OMV थी या पता नहीं क्या, मैं उसका नाम भूल गया हूँ. किट्टू भाई नवीद उमर जो है वो वहां पर हुआ करते थे, नाम मेरे ध्यान से. फॉर सम जिन टेक्नोलॉजीज थी एक उसमें हुई, एलेक्सियर टेक्नोलॉजी थी, इन सब में हुई. सब में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिकॉज आई वाज लाइक अ किक-एस प्रोग्रामर. प्रोग्रामिंग करी अभी भी अल्लाह का शुक्र है.
किस किस लैंग्वेज में आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर?
मैं C++ और जावा दोनों में ठीक था. और
तो इसका मतलब है कि आपको इंटरव्यूज की कॉल,
देन आई चोज एकेडेमिया.
तो या दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर आई वाज गोइंग टू, कि आप अगर इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब की कॉल आ रही है, तो अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने टीचिंग करनी है.
दैट्स द फन थिंग, दैट्स द फन थिंग. आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी जॉब except for one OMV, और जिसका मैं बता रहा हूँ गिट्टू भाई जहाँ पर हुआ करते थे वहां पर मैं, I did apply for it. उसके अलावा ना मैंने जिन टेक्नोलॉजीज में अप्लाई किया था, ना मैंने एलेक्सियर में अप्लाई किया था, ना मैंने LMKR में अप्लाई किया था, कहीं पर भी नहीं किया था. तो वो हेड हंटिंग के अंदर करते थे या जिस तरह भी था, कहीं ना कहीं से सुन सुना के कॉल आ जाए. ये मुझे जरूर याद है कि rosy.pk में एक दफा शायद प्रोफाइल बनाई थी. तो द थिंग इज कि देयर वाज अ बिग स्कार्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट दैट टाइम हु एक्चुअली न्यू द वर्क. और मुझे बल्कि
आपको नहीं लगता कि क्योंकि पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, अवाम है, हर बंदा जब एजुकेशन को कंप्लीट करता है वो कहता है पैसे कमाने की तरफ जाओ, भागा दौड़ी करो, जॉब करो, कुछ ना कुछ करो. तो डोंट यू थिंक कि अगर आप प्रोग्रामिंग साइड पे जाते तो आपकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती, आप ज़्यादा अच्छी जॉब कर सकते थे? क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है.
मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें ना सीधी सी बात है, बल्कि दो बातें कर लें. पहली बात तो ये है कि जिस तरह की मैंने कहा कि इफ यू डू समथिंग दैट यू रियली लाइक देन वर्क बिकम्स फन. तो इफ यू आर अ फन लविंग गाय एंड यू लाइक टू डू थिंग्स विदाउट हैविंग अ टेंशन अराउंड यू, तो फिर आपको वो चीज करनी चाहिए जो आपको पसंद है. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु लाइक्स टू सिंग एंड ही चूजेस टू बी लेट्स से अ बैंकर, देन ऑल द टाइम फ्रॉम 9 to 5 उसकी जिंदगी अजाब पड़ी रही क्योंकि कब जान छुटेगी और मैं जाके कोई सिंगिंग सिंगिंग करूंगा. मुझे टीचिंग का शौक था, अब्बा को फॉलो करता हूँ, वो टीचर थे, टीचर हैं अभी तक, पढ़ाते हैं माशाल्लाह. फॉलोइंग दैट, उसके बाद फिर ये चीज़ आ जाती है. दूसरी चीज़ जिसको मैं आई वुड लाइक टू टच, कि आपकी जो अर्निंग है ना उस पर कोई स्टॉप नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 लाख रुपए कमाता है और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अखराजात जो हैं 9,90,000 रुपये के डाले हैं, तो वो 10,000 रुपये अमीर है. और एक बंदा जो कि 2008 में 15,000 रुपए कमा रहा है और उसके ऊपर घर वालों की तरफ से अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला की तरफ से या किसी और मुआशरे की तरफ से कोई खर्चा ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो 15,000 रुपए अमीर है. तो 10 लाख रुपए कमाने वाला गरीब हो गया और 15,000 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया. मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 थी, जिसमें से मुझे याद है कि 2 या 3 महीने के बाद मेरी अम्मी ने 8,000 की कमेटी डाल दी थी. 7,000 रुपए में दिन से लेकर शाम तक हम लोग अयाशी करते थे, वो क्योंकि हलाल अयाशियां थी तो वो पैसे खत्म नहीं होते. मेरे ख्याल में 2,000 रुपए किसी एनजी डल वाले नहीं पूरे हफ्ते के. अच्छा। महीने के अंदर 5,000 रुपए.
किस टाइम की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो अपनी जवानी में 2 रुपए.
देखिए अगेन बात ये है कि आप किस तरीके बात करते हैं,
देखे ही हैं और सुने हैं,
कोई
रिलेट नहीं कर सकता. दिस इज 2007-2008 उस तब की बात है. और मजाक के अलावा अगर आप अपनी अखराजात को सही तरीके से जनरल करके चलाएं तो 5,000 रुपए तब बहुत पैसे हुआ करते हैं.
एक एवरेज PhD डॉक्टर का सुनने में आता है बड़ा कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बनावला फंड मिलता है मंथली अगर आप PhD करते हैं, कोई इस तरह की बात सच है या ये वैसे अफवाह?
बिल्कुल, हमें बहुत बड़ी एक इंसेंटिव है जिसकी वजह से इससे बड़ा तो कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती. 10,000 रुपए हमें मिलते हैं हमारी सैलरी में.
अच्छा,
PhD अलाउंस के अंदर. और
10,000 का आप क्या करते हैं?
देखिए अभी तो 10,000 रुपए जो है वो हम गिनना शुरू करते हैं तो महीना खत्म हो जाता है, वो 10,000 खत्म ही नहीं होता है. सो जोक्स अपार्ट, अल्लाह बंदे को ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अभी भी अखराजात कम रखे हुए हैं तो गुजारा हो रहा है, वरना एकेडेमिया के अंदर तनख्वाह वगैरह कम है.
एवरेज सैलरीज कितनी है एकेडेमिया के अंदर अगर आपने PhD? क्योंकि PhD डॉक्टर बहुत मेहनत करके बनते हैं, आप और उसके बाद आपको उस क्या जो इतनी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन अगर आप कंपैरिजन करें कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ या डिफरेंट सेक्टर्स के साथ?
बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो मैच टू दैट। मैं इफ आई शेयर नंबर्स, तो मेरा जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है और दो या तीन साल के बाद वो वैसे ही घूमता फिरता कहीं बहरिया यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो मिलता है तो बातचीत करता है तो मुझे कहता है कि पूछता है सर आप कितना कमा रहे हैं, तो आई से हिम कि मैं एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूं। ओह अच्छा, ये तो मैंने पिछले साल क्रॉस कर दिया। सो पॉइंट इज कि एकेडेमिया के अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और दो या तीन साल के अंदर अगर इंडस्ट्री की जॉब करें तो उस नंबर को क्रॉस कर दिया जाता है। तो मेरा एक यहाँ पर बात यही है कि अगर तो एकेडेमिया के अंदर कोई बंदा आता है पैसे कमाने के लिए तो वो मुंह के बल गिरेगा,
ठीक है,
लेकिन अगर कोई बंदा आता है शौक से पढ़ाने के लिए, जो कि आज भी सुबह उठ के उसके लिए एक मोटिवेशन, उसको नहीं चाहिए मुंह धोने की या उसको कपड़े बदलने की, उसको ऑफिस जाने की अपनी यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसके दिल के अंदर एक चीज है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जाके लेट से फॉर एग्जांपल आज मैं वर्चुअलाइजेशन पढ़ाऊंगा या आज मैं फलानी एडीडी को फलानी एडीडी के साथ कंपेयर करूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाली चीज सिखाऊंगा, तो वो जो मोटिवेशन है वो प्राइसलेस है। अभी तक है, जब तक है करूंगा, जब तक नहीं होगी जब खत्म हो जाएगी तो अल्ली।
आप क्या समझते हैं बीइंग द टीचर, व्हाट इज द बिगेस्ट एसेट, आप क्या एक एसेट है जो आप पूरी लाइफ में कमाते हैं बीइंग द टीचर?
देखिए बीइंग द टीचर दो पहलू हैं इसके जवाब देने के, अगर तो आप इसके अंदर रिलीजन को इन्वॉल्व कर लें तो एक पहलू पूरा एड्रेस हो जाता है। सो आई नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद किसी और के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। रिस्पेक्ट इज अलॉट, रिस्पेक्ट इतनी है कि मैं तकरीबन महीना डेढ़ पहले अपनी वाइफ के साथ सेंटोरस गया तो सामने से एक लड़का चलता हुआ आ रहा था तो मैंने हल्का सा उसकी कान में कहा कि ये मुझे गालियां देगा क्योंकि मैंने इसको चार दफा फेल किया। अब ये अगर पॉडकास्ट वो सुन रहे होंगे तो वो जरूर उनको पता है कि किसको मैंने चार दफा फेल किया, और मुझे था कि करीब आके ना ये एक आधी चपेट तो जरूर मुझे मारेगा क्योंकि अच्छा। मैं ओपन एरिया में वॉक कर रहा हूँ और ये अपने भड़ास निकालेगा जिस बेचारे को दो साल मैंने रगड़ा है चार सेमेस्टर ऊपर नीचे, लेकिन जे कि उसने बड़े अच्छे तरीके से सलाम किया और जिस तरह घुटनों को हाथ लगाते हैं इस तरह झुक के उसने कि सर आप जो है ना मेरे, तो आई डिफीटेड यू, आई पास द कोर्स फाइनली, तो मेरा दिल मतलब इस तरह खुश हुआ कि यार मैंने भी प्रेशर में आके, हालांकि होते हैं प्रेशर्स के, यार ये फिर फेल कर दिए यार, अजीब खड़ूस आदमी फिर फेल कर दिए, ये हो गया वो गया, लेकिन मेरे जहन में ये होता है कि जब तक मेरे स्टूडेंट्स एक खास लेवल तक नहीं जाते मैं उनको पास नहीं करता। मेरी मैनेजमेंट भी मुझे इस चीज में सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बात नहीं है कि उन्होंने कभी वो किया हो, मैं शायद हाईएस्ट नहीं तो सेकंड हाईएस्ट नंबर पर होता हूँ जो जिसके हाथों बच्चे फेल होते हैं, लेकिन बच्चे इज्जत बहुत करते हैं। सो ये
क्या आपको मुआवजा तो नहीं दिया जाता फेल करने का?
कोई मुआवजा नहीं होता, हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल होती है।
अच्छा, हमारी फेल करने पे।
हाँ बिल्कुल, देखें आजकल जो है ना हर चीज अकाउंटेड है, अगर आप कहीं से लेट से फॉर एग्जांपल खाना भी खाएं तो आपको पता है उसको रेटिंग दे रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी में टीचरों से पढ़ रहे हैं उनकी टीचर एवेल्यूएशन नहीं होती होगी? हमारा स्टूडेंट जब तक टीचर एवेल्यूएशन ना कर ले तब तक वो एग्जाम नहीं दे सकता। एक एवेल्यूएशन हमारी होती है मिड टर्म से पहले, एक होती है फाइनल टर्म से पहले, तो जब तक ये दोनों एवेल्यूएशंस ना हो तब तक
और evaluation से क्या निकलता है, क्या मतलब उसकी?
वो देखिए पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, सबसे पहले तो ये कि ये कॉन्फिडेंशियल होती है, मुझे नहीं पता कि मुदस्सर ने मेरे बारे में क्या कहा है, मुझे नहीं पता कि वलीद ने मेरे बारे में क्या कहा है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पूरी क्लास ने 80% कह दिया है कि इस बंदे को ये चीज नहीं आती पढ़ानी, तो उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट मीट्रिक्स हैं, हम लोग एक अबव 90% वालों को अलग कर सकते हैं, बिलो 25% वालों को अलग कर सकते हैं, तो वी ट्राई टू गो फॉर द मीडियन स्टूडेंट्स जो कि हमारे इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर आ जाएं, और उसके अंदर फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूएशन वी डू
चेक। ये बेसिकली जो फीडबैक है ये यूजफुल होता है कि आप लोग उसको यूज कर रहे होते हैं कि हाँ अब यहाँ पे हमें
बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, और हमारे पास जब कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है तो हम टीचर को बताते हैं कि ये देख लो भाई ये तुम्हारा जो है ना खतरे की घंटी।
आई रिमेम्बर जब मैं यूनिवर्सिटी में था और ये शायद आपको भी ये बात याद होगी, देयर वाज अ टीचर जिन्होंने टिका के ना बच्चों को ए ए ए ए दिए हुए थे, मुझे आज तक वो टीचर याद है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स।
लेकिन आपको आपको वो भी याद होंगे, मैं नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन जिन्होंने पूरी क्लास फेल की थी, 10 में से 9 बच्चे फेल कर दिए थे।
वो भी याद है।
ले लेना, नाम लेना सही।
इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं फेल हुआ नहीं, फेल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये कि जब उनका कोर्स आया तो मैंने आई लेफ्ट दैट कोर्स कि मैं ये समर में कर लूंगा,
और समर में भी वही मिल गया।
और कोई चारा नहीं रहा, उनसे पढ़ना पड़ा।
एक्चुअली ही वाज अ वेरी गुड टीचर।
या ही वाज।
अच्छा सर, आप एक पाकिस्तानी यंग बंदे हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं, पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखें, अब आपने पीएचडी कर लिया, आप तो जो करना था कर लिया आपने अपनी।
पाकिस्तान से ना करें उसका।
तो आप भी इसी फार्मूले पे भागो, पाकिस्तान से
नहीं। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान से सर अगर हम भाग जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को ठीक कौन करेगा? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं मतलब बाल सफेद हो गए, बल्कि जो थे वो खत्म हो गए
सर अभी तो,
लेकिन मैंने पासपोर्ट अभी बनवाया। I have never been abroad। मेरा पॉइंट ये है कि जब तक मैं पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर लूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और ऐसा नहीं है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 39 पब्लिकेशंस है।
अच्छा,
और ठीक ठाक मेरे पेपर्स वगैरह कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल के अंदर गए, बट आई नेवर नेवर इवन वेंट अब्रॉड। खैर, ये एक रूम फॉर इंप्रूवमेंट थी, तो आई ट्राई टू एड्रेस दैट, और मैंने फाइनली पासपोर्ट बनवा लिया। लेकिन द रीजन आई एम सेइंग कि पाकिस्तान से ना करें इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लेग पुलिंग। यू वुड नॉट बिलीव कि मेरी पीएचडी जो है वो 6.5 ईयर्स में हुई, जबकि मेरे सुपरवाइजर, अल्लाह ताला उनको खुश रखें, और वो जिस कदर वो लायक आदमी है, वो तो वैसे ही आराम से बड़ा एक नालायक से नालायक बंदे को भी लेके चलते हैं और अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। 6.5 ईयर्स इज आई वुड से मोर देन 10% ऑफ अ नॉर्मल पर्सन्स लाइफ आजकल। तो यही, आप बाहर जाएं तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्रूट मशीन, पीछे से फ्रूट डालो और आगे से जूस निकल के बाहर। तो 3 साल के अंदर से आई डोंट नो एनीबॉडी इन माई whole academic life which is like good 16 years जो के आज तक वलायत गया हो पीएचडी करने और फेल होकर आया। पाकिस्तान में बहुत देखे 8-10 बंदे के, तो मैं अभी फोन बुक से निकाल के दे सकता हूँ जो पीएचडी छोड़ चुके हैं, सुसाइडल हैं 2 बीच में से।
अच्छा, सुसाइड
सर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट।
इतने पढ़े लिखे लोग और सुसाइड,
प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। देखिए, एक बंदा जो पीएचडी कर रहा है वो मोस्ट प्रोबली मॉर्निंग में कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होगा, गॉड फॉरबिड वो टीचर है तो फिर तो बिल्कुल ही हालात खराब है। लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं रहा, कुछ और भी कर रहा है, तो कोई पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कोई रेयर चांस है कि मॉर्निंग में कोई बंदा फ्री है और वो इवनिंग में पीएचडी करे, यानी कि फुल टाइम पीएचडी करे। पाकिस्तान में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अक्सर होता ही है कि मॉर्निंग में या तो कहीं पढ़ा रहा होता है या किसी इदारे में जॉब कर रहा होता है, और साथ उसको अपनी कैपेबिलिटीज इनहेंस करने के लिए साथ पीएचडी कर रहा होता है, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर।
आल्सो प्रेशर एजुकेशनल या फाइनेंशियल?
नहीं, देखिए ना, फाइनेंशियल और टाइम का भी साथ। आप ये देखें कि अगर आप एक रिसर्च करें कि पीएचडी यूजुअली पाकिस्तान में लोग किस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बिफोर 30s पीएचडी स्टार्ट कर देते हैं लोग, और लेटर पार्ट ऑफ 30s 20s होता है, 28 के करीब उन्होंने स्टार्ट करनी है, और वो जाके कहीं रो पिट के 35 के करीब खत्म होगी। इसी दौरान अक्सर शादियां हो रही होती हैं लोगों की, इसी दौरान उनके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी वो इसी दौरान फेस कर रहे होते हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने पीएचडी जब करना स्टार्ट की तो आई वॉजंट मैरिड, और जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो मेरी एक बेटी थी जो कि ऑलमोस्ट स्कूल गोइंग हो चुकी थी। सो आई ट्रेवल्ड ऑल दिस जर्नी, माय फैमिली ट्रेवल्ड विद मी। एंड
मतलब ये है कि पीएचडी करना जल्दी शुरू करने ये प्रॉब्लम है, या पीएचडी लंबी बहुत है और उसमें?
पीएचडी लंबी बहुत है एंड इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। मैं आपको अपना सिर्फ एक केस बता देता हूँ। मेरी जो थीसिस सबमिशन है उधर उस वक्त से लेके फाइनल डिफेंस होने में 1.25 साल लगा था।
So, ये प्रोसेस टाइम है या ये कुछ?
सर, दिस इज द एवरेज टाइम दैट अ पर्सन हैज टू फेस आफ्टर सबमिशन ऑफ थीसिस। देयर आर सो मेनी चेक्स, सम चेक्स आर सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज व्हाइल अदर्स आर पुट देयर फ्रॉम द एचईसी। और दुख इस बात के ऊपर होता है कि एक बंदा जो बाहर जाके 3 साल के अंदर पीएचडी करके आ गया है, उसकी सैलरी जो होती है मिनिमम, वो हमारी मैक्सिमम सैलरी से ज्यादा होती है। तो अगर मैंने पीएचडी, कई दफा मेरे जहन में ये चीज आती है कि अगर यही पीएचडी मैंने बाहर से की होती तो आज मैं शायद 2x कमा रहा होता। कम टाइम में भी हो जाती, बाहर दुनिया भी देखता, शायद चार पैसे कमा के भी आता।
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो करंटली अभी पीएचडी लेवल पे भी काम कर रहा है, क्या वही रट्टा सिस्टम है या कॉन्सेप्चुअल बेस या एजुकेशन सिस्टम कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ?
बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हमारे यहाँ पीएचडी करना बहुत मुश्किल है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर से अगर मैंने पीएचडी की है तो उसके लिए जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज कम्पेयर टू समबॉडी जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बाहर से कहीं से पीएचडी करके आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम लेट्स से चाइना और अदर प्लेसेस। कुछ यूनिवर्सिटीज की पीएचडीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल यूएस से अगर कोई पीएचडी कर रहे हैं, अक्सर यूएस टॉप 10 और वर्ल्ड टॉप 10। यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, हांगकांग जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, बट यू सी पीपल डू नॉट टारगेट दोज थिंग्स। मेरे इतने सारे लोग हैं जो कि जानने वाले पीएचडी करके आए हुए हैं और मुझे उनकी यूनिवर्सिटी का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, बट दे हैव दिस स्टैम्प ऑन इट के फॉरेन डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ा ये आ जाता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया हुआ है। मिसाल के तौर पे दो इम्पैक्ट फैक्टर आपको जनरल पब्लिकेशन चाहिए यहाँ पर, बाहर देर आर सो मेनी पीपल जो विदाउट पब्लिकेशन पीएचडी करके आ गए। यहाँ पर हमारा थीसिस जो है वो दो फॉरन एग्जामिनर्स के साथ से एवेल्यूएट होता है, बाहर नहीं होता। हमारे यहाँ पर इंटरनल डिफेंस होता है, उसके बाद एक इंटरिम डिफेंस होता है, प्रपोजल डिफेंस अलग होता है, फाइनल डिफेंस अलग होता है, इतने सारे डिफेंस होते हैं। बाहर जो आपका पीएचडी के बाद जो एक एग्जामिनर्स ने आपका ले लिया, उसके बाद आपका जो डिफेंस होता है वो एक पब्लिक डिफेंस है। इट्स जस्ट लाइक समबडी सिट्स एंड आस्क अ क्वेश्चन, द स्कॉलर डजंट वांट टू आंसर एंड ही कैन नॉट आंसर।
अच्छा सर, ये सुनते हैं पाकिस्तान में हर चीज जुगाड़ी होती है, तो क्या हमें पीएचडी की डिग्रियां भी जुगाड़ से मिल जाती है, पैसे दो और डिग्री ले लो, कोई इस तरह का?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पर इतने ज्यादा चेक्स हम लोगों ने डाल दिए कि जुगाड़ू सिस्टम तो है नहीं। क्वेश्चन मार्क ये बहुत बड़ा है कि क्या सारे के सारे लोग साफ सुथरी डिग्रियां कर रहे हैं? हाँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग। जुगाड़ू काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दो नंबरी फिर भी कहीं ना कहीं।
मतलब इसी वजह से है कि जुगाड़ को किल ऑफ करने के लिए इसको इतना मुश्किल कर दिया है।
तो देखिए ना, फिर
हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि बाहर के लोग।
मेन रीजन तो ऑब्वियसली यही है, द मेन मोटिवेशन इज दिस थिंग कि आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा साफ करें। लेकिन फिर आप ये देखिए ना कि यही वाले चेक्स और जगहों पर क्यों नहीं है। अब एक बंदा जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 साल के बाद 5 साल कम से कम, मैं 5 कह रहा हूं, 3 नहीं कह रहा, कम से कम 5 साल लगा के, 23 साल लगा के एक बंदा डिग्री करके आ रहा है, तो वही 23 साल के अंदर और बंदा क्या क्या कुछ अचीव कर सकता है, कर सकता है ना। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन के व्हाई चूजिंग पीएचडी और स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम वेयर योर क्वेश्चन स्टार्टेड। तो वो यही है कि इट्स अ
मेरा क्वेश्चन है, मैं अगर जाता हूँ बाहर और मैं डिग्री लेके आता हूँ वहां, आप कहते हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज का, आपने कहा है कि मुझे पता ही नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटीज का नाम क्या है, तो मैं वैसे ही एबीसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आता हूँ और मैं पाकिस्तान में बैरियर यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से डिग्री ली, वो कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर को
एचईसी के अंदर हमें इक्विवेलेंस लेनी पड़ती है और वो प्रॉपर उसको चेक करके क्वालिफाई करके बताते हैं कि हाँ ये सही है नहीं। अगेन लाइक आई सेड, नो डिसरिस्पेक्ट टू अननोन यूनिवर्सिटीज, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उन यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान से आप बहरिया यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लीडिंग यूनिवर्सिटी है। बहरिया यूनिवर्सिटी की डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और लेट से फॉर एग्जाम्पल नेपाल की किसी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की डिग्री, उन दोनों को अगर आप वे करें तो द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। बहरिया की डिग्री यहाँ पर होगी, नेपाल की डिग्री यहाँ पर होगी। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट,
रिजल्ट ये निकला कि पीएचडी अगर करनी है तो पाकिस्तान से ना करो, बाहर से कर लो।
मेरा तो यही है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज नॉट मी बीइंग द, मैं अपने प्रोफेशन से बात नहीं कर रहा, मैं बीइंग जस्ट अ पीएचडी ओनर, पीएचडी डॉक्टर, मैं ये वाली बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान से डिग्री करना मेरे लिए इट वाज अ बैड डिसीजन।
लेकिन अगर आप देखें ना, समवन इज एस्पायरिंग टू बी अ पीएचडी डॉक्टर बट ही डज नॉट हैव द रिसोर्सेज कि वो बाहर जाए और बाहर से करे, ऑल्दो आई थिंक इसमें शायद स्कॉलरशिप्स भी हैं, बट स्टिल वो उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। अब उसको बस कोई चारा नहीं है मगर पीएचडी करने का भी बहुत दिल कर रहा है, तो फिर उसको पाकिस्तान से ही तो करनी है।
That's the reason I did PhD from Pakistan. मेरे पास बाहर जाने के रिसोर्सेज नहीं थे। स्कॉलरशिप एक दो दफा स्कॉलरशिप विन किया था मास्टर्स का, नहीं जा सका, फैमिली कमिटमेंट्स थी। पीएचडी का स्कॉलरशिप विन किया, नहीं जा सका, फैमिली कमिटमेंट्स थी।
सर आप पूरा दिन टीचिंग के बाद कोई फ्री टाइम मिलता है आप लोगों को या नहीं?
देखें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु गो इनटू टीचिंग हैव दिस आइडिया इन देयर माइंड के टीचिंग के अंदर हमें बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिल जाएगा, मिला करता था। वो जिस तरह एक जोक भी बना हुआ है कि थ्री रीजंस टू बिकम अ टीचर, जून जुलाई अगस्त। यूनिवर्सिटी टीचर को यूं नहीं मिलता, हमें नॉर्मल जिस तरह आप लोगों को किसी और प्रोफेशन के अंदर पेड लीव्स मिलती हैं, हमारी भी वैसी उतनी लीव्स होती हैं। वी डू नॉट गेट समर ब्रेक, वी डू नॉट गेट ऑफ डेज इवन आफ्टर एग्जाम्स, कोई इस तरह का सीन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमारा ऑफ टाइम जो है वो नॉर्मल एक 9 to 6 वाला नहीं होता। हमारी 8:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 4:30 बजे खत्म हो जाती है, 4:30 बजे के बाद पीपल डू गेट फ्री टाइम। सो मेरी वन ऑफ द मोटिवेशंस ऑफ गोइंग टू एकेडमिया वाज दैट बिकॉज आई वांटेड टू डू थिंग्स ऑन माय ओन।
अब क्या हॉबीज क्या आपकी अदर देन टीचिंग या कुछ क्या करते हैं?
देखें अब तो लाइफ के एक और मोड से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कि आई एम इनटू स्पोर्ट्स, आई लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स, पहले खेला भी करता था। स्पोर्ट्स देखने के अलावा मैं कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और करता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्यूशंस पढ़ाता रहा हूँ, इट वॉज डिफिकल्ट इन द स्टार्ट टू मैनेज फाइनेंसेस, तो मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाया करता था।
ट्यूशंस में आमदनी ठीक हो जाती है?
ट्यूशन में सर यूनिवर्सिटी की निस्बत आई थिंक 10 times मोर अर्निंग है यूनिवर्सिटी के। अगर नॉर्मल आप यूनिवर्सिटी टीचर की अगर आप तनख्वाह देखें, रिसेंटली वी हायर्ड अ पर्सन ऑन 65,000 rupees, तो 60,000 rupees की तो आपको ओ लेवल की ट्यूशन मिल जाती है आजकल।
sure.
लेकिन जो है कि अगेन जब थोड़े यंग हुआ करते थे, ज्यादा एनर्जेटिक होते थे, वो किया करते थे। इसके अलावा मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे अपने काम कुछ किए हुए। आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट फॉर अराउंड 500 people, जहाँ के टैक्सेस फाइल करता हूँ। और कुछ स्टार्टअप्स वगैरह अपने बनाए छोटे मोटे, वो ज्यादा मेच्योर नहीं हुए, छोड़ दिए। कुछ ऑनलाइन काम कर लिया, कुछ दो ब्लॉग्स के ऊपर मैं एडिटर रह चुका हूँ पहले। मतलब बहुत काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि मतलब अभी मैं वो शायद उनको प्रॉपरली लिस्ट भी ना कर सकूं। उसके अलावा आई लाइक टू डू थिंग्स बाय माय ओन हैंड, मतलब माय कार हैज नेवर बीन टू अ मैकेनिक सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे उसका काफ़ी शौक है। अब्बा से बहुत चीज़ें सीखी, लकड़ी का काम सीखा, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, ये सब चीजें करने का शौक है। तो जो फारिग टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ पेशकश क्लास लेके या तो कुछ खराब कर रहा होता हूँ या सीख रहा होता हूँ, तो इस तरह ही है।
बैक टू द एकेडमिया थिंग, आप रिसेंटली एचओडी बने हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है और हाउ डिड इट कम अबाउट कि आप एचओडी बन गए?
हाँ ये इस तरह है कि मैं आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैंने जहाँ से बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, पीएचडी मेरी पार्ट बहरिया से है, पार्ट नस्प से है। सो जहाँ से मैंने पढ़ाई की वहीं पर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि जहाँ पर मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट मैंने स्टार्ट की जॉब, उसी जगह पर मुझे अल्लाह ताला ने हाईएस्ट पोजिशन तक लेकर गए। और ट्रस्ट है लोगों का, स्पेशली मेरे जो यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर्स हैं उनका, कि उन्होंने मुझे ये चीज़ की, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे मजाज के मुताबिक अलाइन नहीं हो रही, तो थोड़ा टाइम लगेगा। रिसेंटली आई हैव बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक चीज़ मैं जिस तरह पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ, सर जहांजेब अहमद का, ही इज़ वन ऑफ माई आइडल्स, ही वॉज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब। तो अच्छी ये चीज मुझे एक अच्छी लगती है कि मैं उनकी सीट तक पहुंच सका। तो बट दैट्स नॉट द
क्या वैसे ये जो एचओडी होता है, ये कोई पावर पोजीशन है? जैसे बाहर से नजर आ रहा होता है कि यार ये एचओडी है, ये फैसले लेगा डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, कौन से कोर्सेज ऑफर होने चाहिए, क्या होना चाहिए।
बहुत सारे
पे तो मेरा ख्याल है सारा कंट्रोल है, चीजी ने ज्यादा तक उसको सेंट्रलाइज किया है मेरे ख्याल से।
हमारा देखिए, हमारा कोर्स करिकुलम जो है वो एचईसी और पीईसी के साथ मिलके अलाइंड होता है। हमने कितने स्टूडेंट्स की इनटेक लेनी है वो पीईसी के साथ अलाइंड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। टीचर की किस किस्म का टीचर हम लोगों ने हायर करना है, क्या उसकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है हमें गाइडलाइंस मिली हुई, हमने उनको फॉलो करनी है। मेरी तरह का बंदा एचओडी बन के किस चीज़ पे खुश हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि बाय द बुक चलें, किसी को अनड्यू फेवर ना हो, किसी का हक ना मारा जाए। तो उन चीज़ों को आई एम एंजॉइंग राइट नाउ कि मैं कुछ चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ।
लेकिन ये तो ऑपरेशनल मसले मसाइल है। हाँ, चीज़ें ठीक हों, बट हाउ अबाउट द,
तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंड आप आप इस जॉब को मॉनेटरी बेनिफिट के साथ इक्वेट नहीं कर सकते. सो इफ समबडी माई पास्ट वर्जन डॉक्टर अदील बींग नॉट द एचओडी हैड ऑलमोस्ट 20 आवर्स टू हिमसेल्फ फॉर डूइंग रिसर्च. डॉक्टर अदील बींग द एचओडी गेट्स माइनस 5 आवर्स फॉर हिज इवन ऑफिस वर्क. सो वो काम घर जाना जो है वो एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है.
लेकिन एक डिपार्टमेंट में आप क्या इनपुट ऐड करते हैं बीइंग एचओडी, क्या आपके पास कितनी पावर है, क्योंकि आप जैसे हमने बात की कि आपका जो करिकुलम है वो तो सेंट्रलाइज्ड है ना, पीसी और एचसी अलाइन कर रही है, और उसमें आई रिमेम्बर शायद इस तरह की कोई बात भी थी कि वो क्रेडिट आवर्स और उस पर भी वो लोग डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि इतने क्रेडिट आवर कोर होंगे और
बिल्कुल सही है.
तो आपके पास कितना रूम है टू मैनिपुलेट, क्या आप कुछ चेंजेस मतलब कुछ नजरियाती चेंजेस भी आप लेके आ सकते हैं?
हमारी जो भी चेंजेस होती हैं वो डिपार्टमेंटल बोर्ड ऑफ स्टडी से अप्रूव होती हैं, फिर फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडी से अप्रूव होती हैं, और फिर एकेडमिक काउंसिल तक जाती हैं. कुछ इनपुट हम लोग कॉर्पोरेट एडवाइजरी कमेटी से लेते हैं. मेरी क्या इनपुट है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं कोर्सेज की स्केड्यूलिंग कर सकता हूँ, कोर्सेज की ऑफरिंग कर सकता हूँ, जो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स हैं वो चूज कर सकूँ. जिस तरह रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक एजाइल डेवलपमेंट का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया, तो दैट वाज अ यूनिवर्सिटी इलेक्टिव दैट द यूनिवर्सिटी चूज, नॉट द स्टूडेंट्स चूज. सो हम लोग, मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम लोग इनोवेटिव कोर्सेज की तरफ जाएं, कुछ नई से नई चीज बच्चों को करके करना सिखाएं, क्योंकि आजकल की जो नई नस्ल है उसको ये बहुत शिकवा होता है कि यूनिवर्सिटी हमें एंड प्रोडक्ट तैयार करके नहीं दे रही होती.
ऐसे
तो which I have reservations, universities are not for that. लेकिन जे के हम लोग near to that कुछ ना कुछ उसका कर सकते हैं.
अच्छा सर, एक question है कि अगर आपको एक दिन के लिए education minister बना दिया जाए इस मुल्क का, क्या एक ऐसी change है जो आप education system के अंदर लेके आएंगे? Being the teacher और आपने इस system के अंदर काफी flaws देखे होंगे, सब कुछ देखा हो, क्या एक ऐसी change है जो आप समझते हैं कि आप लेके आए जिससे education system में 180 डिग्री चेंज हो जाएगा और जिससे एक वैल्यू ऐड होगी बीइंग द एक्सपीरियंस एज एचडी ऑफ टुमॉरो?
बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, मेरी नौकरी खतरे में इसका जवाब देते हुए. लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में एक चीज इसके अंदर हम लोग जरूर मेंशन में, इस तरह में नॉट बीइंग द एजुकेशनल मिनिस्टर बट जस्ट अ पर्सन, मुझे कुछ चीजों से शिकवा है. हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ऐसे जो कि अच्छे जीपीए के साथ ग्रेजुएट होते हैं, जिनको लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट नहीं करना आता. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जिनको घर में यूपीएस नहीं लगाना आता. बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर्स जरूर ग्रेजुएट होते होंगे जिनको सीमेंट और रेत के मसाले का मिक्सचर का रेशो नहीं पता होगा.
सो कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज नहीं है,
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ज्यादा होने चाहिए, जो कि आई एम ट्राइंग टू एड्रेस. Having said these things,
तो आपने नहीं कहा था कि आप disagree करते हैं इस चीज़ से जो
मैं end product से जरूर disagree करता हूँ. I do not think के a software engineer जब graduate हो तो उसको सारा का सारा, let's say for example, हर चीज आती हो, लेकिन उसको एटलीस्ट आजकल Mearns Tech जो है, अगर वो काफी इन है तो उसको Mearns Tech के बारे में अलिफ बे तो पता हो ना. ठीक है, वो अलिफ बे उसको पता है, वो उससे जुमले नहीं बना सकता, लेकिन अगर कोई ये ग्रेजुएट ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको अलिफ में ही नहीं पता, तो फिर प्रॉब्लमेटिक बात है. और आप बिलीव कीजिए, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीयां हैं जिनको पीईसी दो दो तीन तीन साल की एक्रेडिटेशन देती है, उनके बच्चे को नहीं पता. नहीं पता उनको. मैं आपको बहुत
ये जो आपको गैप नजर आ रहा है कि बच्चों को नहीं पता, क्या बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप इस चीज में ऐड नहीं कर सकते हैं, या आपके भी हाथ बंधे हुए हैं? पीसी जो कोर्स आउटलाइन दे रहा है, आपने बस उसी में चलना है और आप कुछ खुद से चेंजेस नहीं लेकर आ सकते?
हमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें एचईसी ने कहा है कि आपने ये पढ़ाने, इतना परसेंट जो है वो कॉन्टेंट आपका कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा और इतना परसेंट कॉन्टेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से आएगा. मिसाल के तौर पर अब मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस्लामियात पढ़ाते हैं, तो मैं ये बात कहते हुए ज़रा थोड़ा शायद उनको इस चीज़ से इख्तलाफ हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मेरे मुताबिक इस्लामियात शायद पढ़ा के 3 क्रेडिट आवर्स ज़ाया नहीं करने चाहिए. मेरे पास 134 क्रेडिट आवर्स हैं जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी डिग्री करवानी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे को, जिसके अंदर मैं उसको नो क्रेडिट आवर्स कोर मैथमेटिक्स के पढ़ा रहा हूँ, नो क्रेडिट आवर्स जो है उसको मैं इंग्लिश के पढ़ा रहा हूँ, 6 क्रेडिट आवर्स में उसको इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा मैं उसको तजवीद पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको जो कि 0 क्रेडिट आवर का है बट स्टिल पढ़ा रहा हूँ, और इस तरह के इतने सारे क्रेडिट आवर्स हैं जिसके अगर वो मुझे लेवरेज मिल जाए तो मैं एक स्टूडेंट के साथ ज्यादा मेहनत कर सकूं।
अब यहाँ पर रेशो बनाई जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि 60-40 की रेशो, की रेशो तो कम ही होगी।
रेशो कम है लेकिन देखें मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा हूं कि हमारा आपको मैं एक रोड मैप बताता हूं। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1, फिर हम लेके जाते हैं बच्चे को सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और फिर हम थर्ड सेमेस्टर में उसको लेके जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 2 कर दूं और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे ले जाऊं, सो दैट द स्टूडेंट हैज 5 कोर हार्ड कोर कोर्सेज ऑफ प्रोग्रामिंग। नहीं कर सकता, कैसे करूं हाथ बंधे में, वो 134 क्रेडिट आवर से ऊपर जा नहीं सकता, और ये भी हम लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है। पीईसी कहता है 130 इज इनफ, हम लोग 4 क्रेडिट आवर्स अभी भी ऊपर है।
आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लॉट है, कैसी है? या 80s 90s वाला स्टूडेंट अच्छा था या ये 2023-24 वाला स्टूडेंट, फर्क क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने राइट्स के साथ तो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, साथ साथ बदतमीज बहुत ज्यादा हो गए, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। हम लोग नहीं याद पड़ता कि कभी भी किसी सीनियर को नाम लेके बुलाया हो। जो लड़के होते थे वो भाईजन होते थे, जो लड़कियां होती थी वो बाजियां होती थी, बाजी ये काम करते हैं, भाई ये समझा दें, और समझाया करते थे। मेरे एक सीनियर जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने भी लग गए तो मेरे कुलीग बन गए बाद में, मुझे याद है कि आई वेंट टू हिम, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की एक असाइनमेंट थी, नहीं हो रही थी, मैं गया और उन्होंने बड़ा टाइम लगा के मुझे समझाया। आजकल के बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना जूनियर सीनियर की इज्जत करता है, ना सीनियर जूनियर के ऊपर कोई शफकत का रवैया करता है। हाँ, कंधों पे मैं हाथ डाल के फिरना, नाम से बुलाना, ये सब कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए मेरे ख्याल में इस चीज से फर्क नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर की इज्जत भी कम हो गई है आजकल की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की निस्बत। मैं जिस तरह अगर अपने, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, हमारे पास तरह तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह हर उसके, तो एक मैं अगर 2008 के ग्रेजुएट की बात करूं और 2023 के ग्रेजुएट की बात करूं, तो 15 साल के अंदर एक बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है। मतलब दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग कभी क्लास में जाके पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है देखे कि बच्चों को ये चीज पता है, जो कि अगेन 2008 के ग्रेजुएट के अंदर वो जिनका रहते थे तो सिर्फ मुंह देख रहे होते थे, अच्छा ये भी कोई चीज है, और फिर उनको तब जाके पता चलती थी। हाँ, साथ ही एक छोटी सी शिकायत ये भी है कि बच्चे किताबों से दूर हो गए, उनको रेडीमेड चीज चाहिए जो कि 5 मिनट की यूट्यूब की वीडियो के अंदर उनको मिल जाए, कभी भी किताब नहीं पढ़ना चाहते।
तो ये तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ भी तो गई है ना, इज़न्ट इट गुड?
इट इज गुड, बट आई स्टिल एम बिलीवर ऑफ दिस थिंग, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है ना उसके अंदर जो चीज आपको किताब सिखाती है वो आपको यूट्यूब की वीडियो या चैट जीपीटी नहीं सिखा सकता। तो किताब,
आपने चैट जीपीटी का नाम ले लिया, इस पे तो बड़ा क्वेश्चन है कि आजकल तो सुना है कि बच्चे सारे जो हैं वो असाइनमेंट्स और पेपर हर चीज चैट जीपीटी
से सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, बल्कि सिर्फ असाइनमेंट क्या, उस दिन मैंने एक क्विज दिया और मैं कैलकुलस का कोर्स पढ़ा रहा था और मुझे बड़ी ये चीज बुरी लगी है, मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट चीटिंग, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना था, दैट विच इज अ वेरी बेसिक थिंग। एनीबॉडी जिसने एफएससी ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ है उसको 2 पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट निकालना आता है। तो उसने उस सवाल को कॉपी करके तो मोबाइल के अंदर उस पर AI टूल पे लगा के तो उसका आंसर निकालना था, मैंने पकड़ लिया। तो खैर मैं तो नहीं बख्शता किसी को भी जो चीटिंग कर रहे हो, बड़ी एक फेमस सेइंग है कि इफ चीटिंग सिस्टम, if the examination system of our country is bad then bridges fall and people die at the hand of doctors, jo ke ho raha hai hamare mulk mein, to cheating wali jo hai wo cheez bahut zyada
क्या एआई डिटेक्ट करना ह्यूमन माइंड के लिए इजी? डोंट यू थिंक कि एआई की जो रेस है वो ह्यूमन माइंड से आगे जा चुकी है?
देखिए, इफ आई गेट अ ईमेल जो कि 200 लफ्ज की लिखी और उसके अंदर कोई भी गलती ना हो तो मुझे पता चल जाता है कि ये एआई से लिखी हुई है।
वही देसी तरीकों से ही हम एआई को पकड़ रहे हैं।
हां, राइटर नोट नहीं हमारे, देखिए वैसे मैं बहुत ज्यादा मैं असाइनमेंट्स अपनी टर्निटिन के ऊपर लेता हूं। टर्निटिन एक बहुत फेमस टूल है प्लेजरिज्म पकड़ने का, उन्होंने एआई टूल बीच में दे दिए तो वो वहां पे बता देते हैं कितने परसेंट असाइनमेंट जो है वो एआई टूल के साथ जनरेटेड है, तो उसके ऊपर वो करते हैं। बिसाइड्स ये कि मैं आई एम द काइंड ऑफ द टीचर जो कि 8-8 असाइनमेंट्स दे रहा होता है, यूजुअली हमारे उसमें 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं 8 असाइनमेंट्स लेता हूँ फिर 8 के 8 का वाइवा भी लेता हूँ। अच्छा। तो जहां पर जिसने वो किया हो छापा लगाया वहां पर पकड़ा जाता है।
थोड़ा सा ये होता है, मतलब nth लेवल तक जाते हैं सर, मैं मौका छोड़ते नहीं कि बच्चा फेल हो।
नहीं, फेल नहीं, मेरे पास अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 85 क्लास में 10 फेल हो रहे हैं तो 10 ए ग्रेड्स भी हैं। देखिए ना सर, जिस दिन मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना पढ़ाने से, छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जितनी मेरी तनख्वाह है ना उतनी अगर मैं आमों की रेड़ी भी लगाऊ ना तो उतने पैसे मैं कमा ही लूंगा। और स्किल बहुत है, लकड़ी का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, गाड़ी का काम आता है, जितनी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह है उतने पैसे घर बैठ के कमा सकते, कमाए जा सकते हैं।
ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक काम था।
नहीं देखें, लेकिन ये सब कुछ करने के साथ जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी वो कभी भी नहीं मिलेगी जो मुझे यूनिवर्सिटी के उससे मिल रही है। तो मैं अगेन मैं बहुत बच्चों को तंग करता हूँ, मैं उनके असाइनमेंट्स के वाइवा लेता हूँ, मैं उनके क्विजेस के क्वेश्चंस बिला वजह के पूछता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों से सरप्राइज लेता हूँ, लेकिन ठीक है अभी तक जब तक मुझे
लगा। बात ये कि आप खुद कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि आप ये सब करते हैं, मगर जब आप PhD करते हैं और आपको HEC तंग करता है और आपको एक मुश्किल प्रोसेस मिलता है PhD करने का, फिर आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता?
देखिये मेरा जो HEC और PhD से प्रॉब्लम है ना वो ये है ही नहीं, वो टोटली इससे डिफरेंट है। देखें मेरी PhD अप्लाइड थी, मैंने एक मैक्यूलर एडिमा की डिटेक्शन की जो कि अलबसर के नाम से AFIO के अंदर अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। आप उठा के देख लें कितनी PhDs हैं जो अप्लाइड हैं। हमारे मुल्क की 5 बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आप TV कमर्शियल उठा के देख लें तो हमें देख के लगता है हमारे लिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला शायद साफ बाल होना है या स्किन केयर है, हर दूसरा इश्तेहार या तो शैम्पू का या टूथपेस्ट का या साबुन का है, कहीं पर भी हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स एड्रेस ही नहीं हो रहे। अप्लाइड रिसर्च जो कि हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे नहीं हो रही, डिटेक्ट होने के ऊपर चले कुछ ना कुछ हो रही है। आई सॉ अप रिसर्च ऑन फ्यू डेज अगो जिसके अंदर था कि जी पाकिस्तान के अंदर शहरों के अंदर जो नदी नालों के पानी आते हैं उसके अंदर सेल्मोनेला की कितनी वो है। सो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देख लें अपने हल्का अहबाब के अंदर सर्च करके देख लें कितने लोगों ने PhD इस किसी ऐसी चीज में की जिससे हमारे मुल्क का कोई मसला सॉल्व होता हो। फॉर मी आंसर इज 0, फ्लैट 0।
तो एज अ सोसाइटी हम इसका मतलब फेल हो चुके हैं।
हम फेल हो चुके हैं सर, बिल्कुल। देखें हम लोग अंडर ग्रेड कराते हैं, बैचलर्स का कराते हैं सिर्फ इस वजह से सोचते हुए कि हमारा बच्चा कहीं नौकरी कर लेगा या उसकी किसी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। कभी भी हम ये सोच के नहीं कराते कि हमारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि उसके पास कोई स्किल सेट आ जाएगा जिससे वो कोई चीज कर सके।
तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को स्कूल में भेज गलत माइंडसेट से रहे हैं।
हम बच्चों को गलत माइंडसेट्स के साथ स्कूल में नहीं, हम बच्चों को गलत माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। स्कूल एजुकेशन इज एंटायरली डिफरेंट, व्हिच इज आई वुड से 80% एटिकेट एंड 20% ऑफ एकेडेमिया। मेरे ख्याल में अभी भी अगर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल से कोई ऐसी चीज सीख कर नहीं आते जो कि मैं उनको घर में नहीं सिखा सकता।
तो स्कूल तक एजुकेशन सिस्टम ठीक है?
स्कूल तक एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है।
मसला आगे आ रहा है,
मसला आ रहा है जब बच्चे 8वीं से आगे जा रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास जो कोर्सेज हैं। अब देखिए ना, एक आपको मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। मैंने सर मैट्रिक किया है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं यूनिवर्सिटी मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स को ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ। मैट्रिक के अंदर मैं 8 सब्जेक्ट्स का पेपर तैयार करता हूँ, उन 8 सब्जेक्ट्स को मैं एक छुट्टी या बगैर छुट्टी के हिसाब से 8ों को इकट्ठे कमरे इम्तिहान में जाता हूँ, पेपर देता हूँ। उस पेपर की मार्किंग स्कीम का मुझे नहीं पता। यही चीज आप ओ लेवल्स के अंदर देख लें, 8 सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी बॉर्न है, 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो एब्रॉड में पैदा हुए हैं या उन्होंने कहीं बाहर जाना है, इस तरह की कोई चीज उनके लिए उर्दू इस्लामी और पाकिस्तान स्टडीज नहीं है। एक एक नंबर की इवेल्यूएशन की गाइड उनके साथ पेपर के साथ छपती है कि जी ये नंबर है, लेट से मैंने मिड पॉइंट का एग्जांपल दिया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया एक नंबर, सही जवाब निकाला दो नंबर, तो जो बंदा पेपर चेक कर रहा है उसने कहीं पर भी ये नहीं करना कि जी अच्छा तो पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, नहीं, उसके पास एक प्रॉपर तरीका है, बच्चा उसके लिए भी एग्जाम देना आसान, एग्जामिनर उसके लिए एग्जाम चेक करना आसान।
ये
ओ लेवल प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिर क्या सारे लोग फिर ओ लेवल ए लेवल्स की तरफ चले जाएं? नहीं, हमें अपना सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए। इंडिया में 1990 के अंदर मेरे ख्याल में ये कैम्ब्रिज एडेक्सल वगैरह सब कुछ बैन हो गया था, उनका एक एक बच्चा जो है वो सेकेंडरी करता है उनके निजाम के ऊपर। हमारे यहाँ अमीर बच्चा जो है वो ओ लेवल्स ए लेवल्स करता है, गरीब बच्चा जो है वो मैट्रिक करता है।
और प्राइड, ये तो एक सोर्स ऑफ प्राइड है कि भाई मेरे बेटे ने ओ लेवल किया है, हमारा बेटा तो ए लेवल में चला गया।
हाँ, अब मैं उस दिन अपनी वाइफ से ये वाली बात कर रहा था कि हाँ अगर मैं अफोर्ड करता हुआ तो मैं कभी भी अपनी बेटी को मैट्रिक सिस्टम नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक तो बेचारी जलील होकर आठ सब्जेक्ट्स देगी, इकट्ठे देगी, उसके नंबर आएंगे, नंबर उसके जितने परसेंट आएंगे उतनी मेहनत के साथ अगर वो ओ लेवल्स कर लेगी तो आराम से अपनी मर्जी से पहले तीन सब्जेक्ट्स दे देगी, फिर तीन दे देगी, फिर दो दे देगी, सुकून से तोड़ तोड़ के पेपर देगी, नंबर भी ज्यादा आएंगे और सब कुछ बेहतर।
तो एक प्रॉब्लम तो ये आया कि जब वो मैट्रिक सिस्टम में अगर बच्चा जा रहा है तो वो आठवीं क्लास के बाद ओवरबर्डन हो रहा है आपके ख्याल से, और ओवरबर्डन होने के साथ साथ उसको एक फॉर्मूला भी नहीं पता कि मेरी मार्किंग होनी एग्जैक्टली किस तरह से।
एवोल्यूशन नहीं आई ना एजुकेशन के अंदर, एवोल्यूशन नहीं आई। मेरे वालिद साहब ने जिस चीज के अंदर मैट्रिक किया था, मेरी वालदा ने जिस सिस्टम के अंदर मैट्रिक किया था, आज का बच्चा भी तकरीबन वही कमोबेश उसी सिस्टम के अंदर मैट्रिक
किया। हर बंदे ने मिस्टर चिप्स पढ़ा है, अभी भी बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ा है।
हाँ, नो ऑफेंस टू मिस्टर चिप्स, ही वाज एन ऑसम वो, लेकिन पॉइंट इज की कहीं पर इनोवेशन है नहीं ना। कहीं पर इनोवेशन आती है तो उसके अंदर लड़ाई ये पड़ जाती है कि जी इसमें से जहाज का चैप्टर निकाल दिया तो इसके अंदर जी फलानी चीज का निकाल दिया, इसके अंदर ये करती है। पोलिटिसाइज हम लोग इतने हो चुके हुए हैं कि हम लोग किसी तब्दीली को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और
बुक्स तो नहीं आती रहती है वैसे।
देखिए, बुक्स में एडवांसमेंट हुई है, कंटेंट के अंदर एडवांसमेंट कोई बहुत कम हुई है। आप अभी भी, मैं आपको साफ यहाँ पर कहने को तैयार हूँ, आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की सिर्फ मैथ्स की किताबें उठा के देख लें, उनके एंड में एक सवालों के जवाब, हर सवाल का एंड में एक जवाब दिया होता है। आप उनको टैली करके देख लें कि क्या उन सबके जवाब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं होंगे। मैंने जो कंप्यूटर साइंस की किताब, मैंने जब एफएससी की थी, आईसीएस किया था, तो हमारी टर्म स्टार्ट होके फर्स्ट टर्म खत्म होगी, सेकेंड टर्म खत्म होने के बाद फेडरल बोर्ड की किताब आई थी, और उस किताब के अंदर से वो मैं कहीं से निकालूंगा, मेरे पास पड़ी भी है, अभी भी कम से कम 25-30 मिस्टेक्स को मैंने वो किया हुआ था जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। कैन यू इमेजिन आजकल की जितनी दुनिया आगे चली गई है उसके बाद बच्चे की किताब के अंदर से स्पेलिंग मिस्टेक।
अच्छा, आजकल सर एक बड़ा इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एजुकेशन में, पहले हम सुनते भी नहीं थे जब हम एजुकेशन करते थे, कि आजकल के बच्चे और ये हाई स्कूल एंड सिस्टम में और यूनिवर्सिटीज में ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। क्या आप बीइंग द टीचर आप इस इश्यूज को देखते हैं कि ड्रग बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो चुके हैं और जितनी भी हाई यूनिवर्सिटीज है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज के?
वैसे एडिक्ट्स हमारे दौर में भी होते थे,
हमारे दौर में एडिक्ट्स होते थे, लेकिन होस्टलाइट्स ज्यादा हुआ करते थे। जो बच्चे माँ बाप से दूर थे वो जरूर ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे, बल्कि कहा जाता था कि नहीं नहीं हॉस्टल में नहीं डालना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आजकल देखिए, माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बाप घर आता है मोबाइल के अंदर स्क्रॉल कर रहा है। माँ जो है वो अक्सरों की माएं तो नौकरियां कर रही हैं फॉर वन रीजन और अनदर, लेकिन आप ये देख लें कि बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये याद है कि जब हम लोग मेरे ख्याल में एफएससी में हुआ करते थे तो हमारा एक क्लास फेलो सिगरेट पिया करता था, पूरी क्लास उससे नफरत करती थी। अब जो एक बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा होता उससे क्लास नफरत कर रही होती कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आप ना दें बच्चों को जगह, सिगरेट पीने की ना जगह दें। मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले हुआ इस तरह कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में से गुजर रहा था और वहां पर मुझे तीन गाड़ियां शू 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 करके गुजरी और आगे इशारा बंद था तो वो इशारे के ऊपर खड़ी होगी, मैं उनके साथ आके खड़ा हुआ तो मैंने देखा उसमें PSI के बच्चे थे और तीनों सबने यूनिफॉर्म पहने हुए थे और टाइयां लटक रही थी और वो और बीच में से दो बंदे बैठ के वो क्या होती है इलेक्ट्रिक सिगरेट वेप वगैरह वो कर रहे थे। तो क्यों गाड़ियां दी हुई उनको, माँ बाप ने क्यों इतना छूट दिया हुआ है गाड़ियां, तो अंडर एज ड्राइविंग।
आजकल ड्रग को बड़ा एक सेंस ऑफ प्राइड लिया जाता है, मतलब मैं अगर स्मोकिंग करता हूँ या कुछ तो बड़े प्राइड से बताया जाता है कि यार आई एम अ स्मोकर, और अगर कोई ड्रिंक करता है तो बड़े प्राइड से बताता है मैं ड्रिंकर। पहले की सोसाइटी अगर आप पाकिस्तान 90s में 2000 में देखते हैं तो लोग इसको बड़ा छुपा के और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे। अगर मैंने अपने देखा है कि मेरे जो अगर मेरे वाले साहब के छोटे भाई हैं स्मोकिंग करते थे, तो जब वाले साहब आते थे वो स्मोकिंग बिल्कुल छुपा देते थे
बिल्कुल।
बट अब आजकल का स्टूडेंट, आजकल के बंदे इतने निडर हो चुके हैं कि वो किसी बड़े का लिहाज नहीं करते, वालिद हो, वालदा हो, टीचर्स हो, सबके सामने सिगरेट पी रहे।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग कम एज पे हुआ करते थे और ये चीज बड़ी कॉमन थी कि अगर सिगरेट लेने कोई बच्चा चला जाए जिसकी दाढ़ी मूछ ना आए हो तो शॉपकीपर भी उसको सिगरेट नहीं देता था। लेकिन सर पूरी पूरी सोसाइटी डिक्लाइन में है इस वक्त। हम किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, लेकिन जो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, हमें इसे डिनाई नहीं करना चाहिए और इस चीज़ को एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। माँ बाप बच्चों को प्रॉपरली चेक करें, बिला वजह बच्चों को लिबर्टी ना दें, जो चीज़ हमारा मज़हब सिखाता है उस चीज़ के ऊपर रहें, और ज़्यादा एडवांसमेंट में वो जिसे कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूला, वो मुहावरा जो है वो बहुत डीप है। हमें अपनी वैल्यूज को अहमियत देने की जरूरत है। हेलोवीन नाइट्स मनाना, वैलेंटाइंस डे मनाना और ये सब कुछ करना, सिंबल ऑफ स्टेटस बना हुआ है या एक फैशन बना हुआ है, ये सब कुछ करने की बजाय आप अभी पूछ लें, आप एक बच्चे को उठाएं, आप उससे कहेंगे जी मुझे 10 सहाबा के नाम बताओ, नहीं बताओ
नहीं।
ठीक है, आप हैरान होंगे कि आप 4 बड़ी किताबों के नाम पूछ लें, नहीं बताओगे बच्चों को। आपको ये नहीं पता होगा, आप बच्चे से बुला के पूछ लेंगे तो रायत किस पे नाजिल हुई, उसको नहीं पता होगा। एक स्टूडेंट है, उससे वैसी ही बात हुई और उससे पूछा कि हजरत एक्स वाई जी कौन थे, तो आगे से उसका जवाब था कि वो भी एक हजरत थे। और मुझे इस चीज के ऊपर देख के बड़ा मतलब रोना आता है, शर्म आती है कि जब उसके वालिद साहब को मैंने देखा तो माशाल्लाह उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, वालदा उनकी बाबरदा, लेकिन बच्चों को तालीम नहीं है। क्यों? क्योंकि वालिद साहब कहीं और मसरूफ हैं, वालदा कहीं और मसरूफ हैं, बच्चे पल रहे हैं।
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वालदा टाइम जरूर दें, क्योंकि सबसे एजुकेशन जो बच्चा सीखता है वो अपने घर से सीखता है, इंस्टीट्यूशन कितना की सिखा लेंगे किसी को या कुछ। अच्छा, एक आप एजुकेशन सिस्टम में एक जेंडर है, मेल फीमेल, क्या मतलब जो जेंडर में जो आजकल लाइक स्टूडेंट्स हैं, क्या फीमेल देखने में आता है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लाइक हो गई हैं, बहुत फोकस्ड हो गए टुवर्ड्स एजुकेशन, और जो लड़के हैं बीइंग द इंटेलिजेंट और वो समझे जाते हैं बट वो एजुकेशन से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, आपको भी ऐसा डिफरेंस फील होता है या नहीं?
देखें, मेडिकल साइंस के अंदर तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा आगे जा रही हैं।
ठीक है,
हम क्योंकि हमारे घर में मेरे बड़े भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, मेरी बहन जो है वो आर्किटेक्ट है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हूँ, मेरी वाइफ जो है वो एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर है, तो देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। सो हमारी फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ लड़की बच्चियां हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेजोरिटी लड़के ज्यादा अच्छा कर रहे हैं।
इंजीनियरिंग में तो लड़कियां आती
हैं, वो कम आती हैं उसकी उसके अगर उसमें आप ये देखें रेशो अगर निकाली जाए तो हाँ लड़कियों की रेशो बेहतर है कि 10 आती हैं उसमें से 2 बहुत लाइक होती हैं, लड़के 40 आते हैं तो उसमें से 4 बहुत अच्छे होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रेशो। लेकिन उसके अंदर ये भी है कि शायद, अगेन मैं अपनी पिछली बात के साथ इसको लिंक करूंगा कि शायद बच्चियों के ऊपर अभी भी हमारे मुआशरे में चेक एंड बैलेंस ज्यादा है
लड़कों पे। बात यही है कि एट द एंड ऑफ द डे चेक एंड बैलेंस की ही बेसिकली गैप है कि पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो उनसे हैं वो
बिल्कुल जब बच्चे को बाप से सपोर्ट चाहिए तो वो बाप का डिपेंडेंट है, लेकिन जब बच्चे को अपना कोई काम करना है तो वो कहता है मैं 18 का हो चुका हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सो एक वेग चीज है जो कि इट नीड्स टू बी क्लेरिफाइड। हमारे बहुत सारे घरों में अभी भी लोग अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जिसमें मुलाकात जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं होती। हमारे
एक तो मोबाइल जो है ना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर जगह मैं जाता हूँ अब तो मैं ज्यादातर नोटिस भी करने लग गया हूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी छोटे हैं, तो मैंने ज्यादातर नोटिस किया है कि छोटे बच्चों को बकायदा मोबाइल पकड़ाया जाता है कि तुम मोबाइल पकड़ो और सुकून से बैठ जाओ, एंड पेरेंट्स आर सो कंटेंट कि मेरा बेटा कोई बदमाशी नहीं कर रहा, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा,
शरारतें नहीं कर रहा,
शरारतें नहीं कर रहा, और वो बड़ा
खुश है, व्हिच इज रॉन्ग,
सुकून से बैठा हुआ है, देखो कितना अच्छा बच्चा है।
देखिए जी, हम लोगों ने तो इसके ऊपर एक छोटी सी बात नोटिस की है कि ड्रग जो है ये सिर्फ पीने से या सूंघने से या इनहेल करने से नहीं है, ये देखने से भी है। बहुत सारे बच्चे जब तक कोको मेलन ना देख लें खाना नहीं खाते, मेरा अपना बेटा नहीं खाता,
उनका डोपामिन रश उसी पे है ना,
हाँ वो बस लगेगा और उसके ऊपर एकदम वो उसका दिमाग टून हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो उसको खाना खिला दें या अल्लाह माफ करे कुछ कुछ भी खिला दें खा देगा, विच इज रॉन्ग। ये छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में भी आ जाए, आपको क्या लगता है कि जब हम लोग 17-18 के नहीं हुए थे, हमारे माँ बाप ने हमें कभी मोबाइल फोन नहीं लेकर दिया था, तो क्या हम लोग किसी गलत तरीके से बड़े हुए? बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। अब एक 5वीं क्लास के बच्चे को सालगिरह के ऊपर उसका बाप अगर उसको आईफोन लेकर दे रहा है तो फिर ही इज इनवाइटिंग फॉर ट्रबल।
लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो हो जाएगा कि वो कहेगा कि यार अब आजकल वो स्कूल में जाता है, उसके उसके जो क्लास फेलोज हैं वो यही बातें कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द मुआशरे में ये हो रहा है, किसी शादी में हम उसको लेके जाते हैं, किसी भी फैमिली इवेंट में लेके जाते हैं, उसके साथ के बच्चे यही कर रहे हैं।
तो अगर उसके साथ के बच्चे सारे ड्रिंक कर रहे हैं तो फिर वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है, तो फिर उसको ड्रिंक भी करवाना स्टार्ट करा दे।
पर ड्रिंक में तो उसको फिर नजर आएगा ना कि यार ये अखलाकी तौर पर ड्रिंक तो करना ही नहीं है, सो समवेयर समहाउ ही नोस कि सबकॉन्शियसली हमें पता है कि ड्रिंक तो नहीं करना।
क्योंकि मैंने एक बहुत स्ट्राइकिंग वो बात की है, तो शायद आपको वो चीज लग रही है कि हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा मेलो डाउन करके खुद सोचें तो इस चीज से जितने प्रॉब्लम्स हैं वो एक पढ़े लिखे बंदे को तो पता होने चाहिए। हाँ अगर कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई किसान है, कोई कोई वैसे बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो ये चीज करता है कि हाँ मैं अपने बच्चे को तोहफतन मोबाइल ले दूं क्योंकि उसकी फूफी के बेटे या चाचे के बेटे के पास है, तो समझ आती है। प्रॉब्लम मुझे वहां पर आती है जहां पर एक इंजीनियर अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे रहा है, एक डॉक्टर अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे रहा है। बहुत बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चे को कास्ट करके टीवी के ऊपर दिखाएं, जो चीज है वो सब एक तो वो दूर से देखेगा, उसकी नजर खराब नहीं होगी, कंटेंट जो है वो सुपरवाइज्ड होगा, और फिर भी वो जब आप उसको आवाज देंगे तो वो आपके जवाब होगा। जब आप बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं उसका टोटल अटेंशन इसकी तरफ चली जाती है, इज कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड।
एग्जैक्टली, सो पॉइंट वही भी आ जाता है कि आपने बच्चों को खुद तवज्जो ज्यादा देनी है, नंबर वन, और फिर नंबर टू उसके बाद मुझे यही समझ आई है कि नंबर टू उसके बाद ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लिवरेज भी नहीं देनी है, उनको उस हद तक ही लिवरेज देनी है जिस हद तक आप खुद भी उसके साथ रिलेट कर सकें।
बिल्कुल, अब देखिए ना, अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मर्सिडीज खरीद लूँ तो मैं उस मर्सिडीज की शायद बहुत ज्यादा केयर करूं, मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखूं, उसको सुबह शाम चमकाऊं, उसको अपनी नजरों के सामने रखूं, उसको अपनी आंखों का तारा बना के रखूं, तो यही चीज अगर हम अपनी औलाद के साथ करें कभी भी मामलात खराब नहीं।
वेरी गुड,
तो पॉइंट इज कि आप अपने उसको अपनी औलाद को कितना अच्छा समझ सकते हैं और कितना टाइम दे सकते हैं।
ऑन दिस नोट आई थिंक दिस इज बीन अ ग्रेट टाइम, हमने आपसे आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन किए, काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिला है इसमें, और मेरे ख्याल से शायद इस पे ही इख्तितामी नोट
से आपकी बड़ा आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में एक ओवरऑल एक जेनेरिक परसेप्शन जो एक ऑडियंस की होती है, और स्टूडेंट्स किस टाइप के जा रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, ये बड़ा एक क्लैरिटी मिली है इस पूरे कम्युनिकेशन से, तो आई थिंक ये बड़ा हेल्पफुल होगा आम ऑडियंस के लिए कि वो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम,
थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैंने भी एक चीज नोट की है कि आजकल पॉडकास्ट जो है इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टू लिसन सो मेनी पॉडकास्टर्स, खासतौर पे पीपल हु ट्रैवल अ लॉट, इट्स अ वेरी गुड वे टू पास द टाइम एंड लर्न समथिंग। सो
थैंक यू,
थैंक यू, ओके।